ओम ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय का नाम कर्दम मुनि का वैराग्य है। इसकी संक्षेप में कथा इस प्रकार से है कि स्वयं हुआ मनु की कन्या देवाहुति का विवाह कर्दम मुनि से होता है। स्वयं वो मनु बड़े शक्तिशाली राजा होने पर भी अपना पुत्री का विवाह जो है वो एक साधु से करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि वो एक राजा ऋषि थे, साधारण ऐश्वर्य वाले राजा नहीं थे। उनको पता था कि ऐश्वर्य नश्वर है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति चिरंतन है, नित्य है। इसलिए आज के जमाने में तो हम देखते हैं कि कोई भी राजा या कोई भी धनी व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह जो है वो अपने बराबरी के कुल में करता है ताकि उसकी जो प्रेस्टीज है, मान सम्मान जो है बना रहे। लेकिन यहां पर स्वयंभू मनु एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण देते हैं कि कोई भी स्थिति में होंगे, गरीब होंगे या अमीर होंगे, धनवान होंगे, बहुत प्रसिद्ध होंगे, हमारी समाज में कोई स्थिति होगी, फिर भी ये सबके आगे भगवान की भक्ति जो है और भगवान के प्रति साक्षात्कार और सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह जो है जंगल में रहने वाले, जैसे हिंदी में कहते हैं भक्कड़ बाबा, बस कुछ भी नहीं, ना झोपड़ी है, ना कुछ नहीं, ना अन्न का साधन है, ना आमदनी है, ऐसे साधु से कर लेते हैं। और राजकन्या जिसने कभी भी जमीन पे कदम रखा नहीं, ऐसी राजकन्या जो हमेशा गालीचे पर चलती रहती है, कभी नंगे पे जमीन पे कदम रखा नहीं, ऐसी कन्या जो है एक साधु के झोपड़ी में चले जाती है। वहां पर भी कोई साधन नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो अपना पति जो है वो साधु भजन में लगे हुए हैं बिल्कुल निद्रा कई महीने तक, हाँ ऐसा नहीं कुछ दिन का व्रत था, ऐसा नहीं, कई साल तक उसका व्रत भजन चलता रहा। उसमें बहुत सुंदर कोमलांगी देवाहुति जो है बहुत कृष हो गई, बहुत कमजोर हो गई, उसका सौंदर्य पूरा उतर गया, उसके चेहरे की कांति निस्तेज हो गई, शरीर से दुर्बल हो गई कई दिनों के कई महीनों के उपवास के कारण, लेकिन लगातार अपने पति की सेवा में लग गई। कुछ समय बाद जब पति का ध्यान से वो जागृत हो गए बाह्य चेतना में, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की, संतति प्राप्ति की इच्छा की, तो कर्दम मुनि ने उनको 9 कन्याएं दी, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और वह कन्या कैसी, अरुंधति, ख्याति, जो ख्यातनाम ऋषियों की बातें पत्नी बनी, ऐसी सुंदर और सुसंस्कृत और अच्छे गुणों से अलंकृत सुंदर कन्याएं उनके कुल में जन्म। यहां तक कि 9 कन्याओं के जन्म होने के बाद में ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करते, वो कहते हैं आपकी कन्या इतनी सद्गुण संपन्न है, अभी उनका विवाह आप अच्छे अच्छे ऋषियों के साथ कर दो। तो वो भी अपने कन्याओं का विवाह जो है वो जो 9 ऋषि है जिसमें वशिष्ठ आते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े साधुओं का वर्णन है, वो श्रेष्ठ मुनियों के साथ में उनका विवाह, अंगिरा मुनि है। और उसके बाद में फिर स्वयं भगवान देवावतु के गर्भ में आते हैं, और कर्दम मुनि समझ जाते हैं कि परम भगवान ने विष्णु का जो अंश है वो मेरे पत्नी के गर्भ में आ चुका है, हमारे पुत्र के रूप में। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान आएंगे और परम ज्ञान जिसको सांख्य योग कहते हैं, सांख्य शास्त्र कहते हैं, उसका प्रचार करेंगे, भगवान यात्रा करेंगे, सफर करेंगे जीवों का उद्धार करने के लिए। और यथावकाश भगवान का भी अवतार होता है और साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। कर्दम मुनि जीवन भर तपस्या में लगे थे, भजन में लगे थे, किसके लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और भगवान का उनको दर्शन होता है तो स्तुति करते हैं और भगवान से आदेश मांगते हैं कि अब मैं गृहस्थी को छोड़कर चला जाऊं। थोड़ा सा विपर्यास होता है इसके अंदर कि जिनकी प्राप्ति के लिए जीवन भर तपस्या ध्यान किया विरक्ति का अनुभव किया जंगल में रहे उनकी प्राप्ति होने पर क्या बोल रहे हैं कि हम अभी छोड़ के जा रहे हैं। इसका कारण यह कि भगवान स्वयं उनको आदेश देता है कि अभी आप जा सकते हैं अभी आप फिर विरक्त होकर वानप्रस्थ लेकर जंगल में जाकर भजन कर सकते हैं। तो भगवान के आदेश के अनुसार उनकी इच्छा के अनुसार वो चले जाते हैं। दशरथ जी महाराज ने श्री रामचंद्र को जन्म लिया तो उनका लालन पालन किया। नंद महाराज ने भी यशोदा मैया के साथ में कृष्ण भगवान का लालन पालन किया लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार किया। जो भगवान की इच्छा थी उनके संग रहने की तो वो भगवान के संग रहे। जहां पर भगवान की इच्छा थी कि वो चले जाए वो निकल गए। अपने भक्तों के माध्यम के द्वारा भक्त जो है भगवान जो है वो आम जनता को शिक्षा देते। ये जो कर्दम मुनि का उदाहरण है हमारे लिए सबके लिए बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे पहले तो यहां पर पराभक्ति का जो उल्लेख आता है पराभक्ति जो भगवान के अलावा किसी भी भौतिक कल्मश के प्रभाव से मुक्त है मतलब अन्य अभिलाषा शून्य भगवान के अलावा कोई अन्य अभिलाषा न रखते हुए उस प्रकार की पराभक्ति यहां पर कर्दम मुनि कर रहे। वो कोई ऐसे ज्ञानी भक्त नहीं कोई भगवान के शक्ति के द्वारा प्रभावित मायावादी भक्त नहीं मायावादी नहीं भगवान के परम भक्त हैं पराभक्ति करने वाले हैं। और उनका जो भी उन्होंने किया उसमें कोई भौतिक कल्पना नहीं था कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए धनवान मिलना चाहिए मैं अगले जन्म में किसी लोक को प्राप्त करूं या प्राप्ति सिद्धि करके मेरा अपना लोक बनाऊं। बहुत लोग मेरा विरक्ति में दिखते हैं लेकिन उनके मन में ऐसी इच्छा होती है कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए फिर मैं अपनी इच्छा से अपना नियंत्रण के लिए लोक बना दूं वहां का राजा बन जाऊं वहां पर सब नियंत्रण करूं और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ऐसे भक्त कर्दम मुनि नहीं थे। कर्दम मुनि तो पराभक्ति किस तरह के उनके मन में भगवान का ध्यान पूजन करते समय कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। गृहस्थों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बहुत सारी भौतिक सुविधाएं आसपास रहती है और बहुत सारी सुविधाएं जो आसपास नहीं है वो दूर दिखाई पड़ती है और उससे हमारा मन जो है प्रभावित होते रहता है। एक किसी मुझे अच्छे व्यक्ति ने दो कुछ दिन पहले बताया था कि जो हमारे हाथ में है वो मिट्टी होती है जो हमारे हाथ में नहीं वो सोना होता है। इसलिए जो हमारे हाथ में नहीं है और सोना दिखता है इसके पीछे सब लोग भागते रहते हैं। अब जब वो सोना हम प्राप्त करते हैं तो हमारे हाथ में आते हैं वो मिट्टी बन जाता है और फिर हम जो हमारे हाथ में नहीं है उस सोने को प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे पास है वो हमको एकदम तुच्छ लगता है जो हमारे पास नहीं है वो बड़ा कीमती लगता है उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं। और गृहस्थों के लिए खास करके उनके हमारी ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमको जो भी हमारे पास है उसके मूल्य रहता नहीं है जो दूसरे के पास है उसके लिए हम आकर्षित रहते हैं ईर्ष्या करते रहते हैं तुलना करते रहते हैं कंपेयर करते रहते हैं दुखी होते रहते हैं ताने मारते रहते हैं द्वेष करते रहते हैं। ये सब हमारे गृहस्थी जीवन का लक्षण है। लेकिन वास्तविक गृहस्थी जीवन जो वो है जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती जो भगवान की तरफ से प्राप्त होता है उसमें गृहस्थ जो है संतुष्ट रहता है और संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि जो हमारे नसीब में है जो भाग्य में है जो हमारे कर्म में लिखा है रूपक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो हमारे पुराने जन्म के कर्म है अच्छे कर्म है बुरे कर्म है उसके अनुसार भगवान सब कुछ जानते हुए सर्वज्ञ होते हुए उसके लिए अच्छे फल और बुरे फल देते रहते हैं। और भक्त से अपेक्षा ये होती है कि उसे अच्छे फल के लिए भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और बुरे फल से भी दुख नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए कि जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार ना कुछ समय के पहले हो रहा है ना कुछ भाग्य से अधिक और कम हो रहा है। समय के अनुसार ही होगा जब मिलना होगा तब मिलेगा जब जाना होगा तब जाएगा। और जितना मात्रा में लिखा है हमारे लिए इतने में हम जिसके लिए योग्य हैं उतना ही मिलेगा उससे कम नहीं मिलेगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा। ये ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान का मतलब व्यक्ति जो हमारे पास है, जिस स्थिति में हम है, उसको परिपूर्ण समझते हैं। इसलिए वो ज्ञान का अक्षर चाणक्य मन होता है। ज्ञान का मतलब कि जो भी आज की स्थिति में प्राप्त है उसको परिपूर्ण मानना। क्यों परिपूर्ण मानना? क्योंकि वो हमारे लिए भगवान ने हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए की हुई परफेक्ट योजना है। हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार आज की स्थिति में जैसे भगवान ने हमको रखा है, वो आज की स्थिति में इन द गिवन कंडीशंस हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए वो अनुकूल स्थिति है। हम ये नहीं कह सकते अरे हमारा ऐसा है, अगर हमारा वैसा होता, पड़ोसी जैसा, तो कितना बढ़िया होता, तो हम कितना कुछ कर पाते। इसकी वजह से हम लोग अटक गए हैं, इसके आगे हमारी प्रगति नहीं हो सकती है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है। सच्चे ज्ञान का लक्षण यह है कि हम समझते हैं कि जो भी हमको प्राप्त है हमारी स्थिति में, वो हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए परिपूर्ण है। सुदामा जी की भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, अगर हम उसकी कथा पढ़ेंगे आज, तो हम लगेगा ऐसा भक्त नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे वो भूख के मारे कांपते थे। बोले ऐसे भक्ति करने से क्या लाभ? जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो सर्वधन संपन्न है और दो वक्त रोटी भी नहीं दे रहे, और वो जैसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके खून में जब शक्कर की लेवल बहुत कम हो जाती है तो वो कांपने लगता है, उसको पसीने आते हैं, ऐसे ही कुछ अवस्था थी सुदामा की। और उसमें भी वो भगवान का नाम लेने में लीन थे। कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि इतना को कपवा रहे मुझे, आपका ही नाम ले लो, पूरा जीवन मेरा समर्पित है आप, मैं कोई इच्छा रखता नहीं हूं, कोई भौतिक लाभ मेरे मन में नहीं है, तो क्यों आप ऐसा कर रहे भगवान? ऐसा नहीं बोल रहे। वो जानते हैं कि मेरे भगवान जो है सब कुछ जानते हैं। क्या नहीं जानते हो? एक तो सब कुछ जानते हैं, दूसरा बात यह है कि वो सर्व हित चिंतक है। मेरे हित के अलावा कुछ वो करेंगे नहीं। मेरे इंद्रियों को लगेगा कि ये अच्छा या बुरा है, मेरे इंद्रियों को स्वाद आएगा अच्छा या बुरा, कठोर या कोमल, लेकिन जो भी वो करेंगे, क्योंकि मेरे वो सर्व हित चिंतक है, वो मेरे अच्छे के लिए करेंगे, क्योंकि मेरे वो सबसे बड़े हितैषी, और मैं उनका दास हूं। और जो उनकी शरण लेता है उसका कभी भी वो अकल्याण नहीं करते, हमेशा कल्याण ही करते। वो कल्याण किस तरह से करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, कि हमारी इंद्रियों को बहुत कष्ट में लगेगा, लेकिन वो कल्याण हमेशा करते रहते। इस बात पर हम सब भक्तों को विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भजन करते हैं तो हमको सबसे पहले अनुभूति होनी चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, और भगवान की निरंतर सेवा करना ही हमारा मूल धर्म है। ये अनुभूति अगर हमको होती है तो हम एक कदम आगे बढ़ चुके। सबसे पहले अनुभूति और महत्वपूर्ण अनुभूति ये नहीं कि मैं और भगवान एक ही है और मुझे उनसे एक रूप होना है, उनसे एक रूप होना है और आखिर में आके भगवान बनना है। ये मायावादियों का सिद्धांत है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि हम भगवान के दास है, वो सबसे पहले उसके जीवन में क्या अनुभव होता है? वो बड़ा खुश हो जाता है, आनंद का अनुभव करता है। सबसे बड़ी बात यह, भगवान से ईर्ष्या करने वाला, भगवान का पद प्राप्त करने के लिए मेहनत करने वाला हमेशा चिंता में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, लेकिन जो भगवान की सेवा में रहता है वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो हमारी मूल स्थिति है। हाँ, मछली को उठाकर आप सेंटेड पानी में डालो, सुगंधमय पानी में रखो या और कहीं रखो, मछली तड़पती रहेगी, लेकिन जब वो सिंपल जल में प्रवेश करेगी तो वो आनंद का अनुभव करेगी। वैसे ही जैसे ही जीव भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है, वो जैसे मछली पानी में वापस जा रही है वैसे आनंद का अनुभव करता है। इसलिए सेवा जो है वो सबसे बड़ी हमारी जीवन की प्राप्ति, सबसे बड़ा हमारे मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक कोई बीमारी होती है सब जगह फैल रही है, जहां भी आप जाएंगे उस एरिया में जाएंगे तो आपको भी लग जाएगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया में जाने के पहले एक टीका लगा लो, टीका। और टीका लगाने के बाद में 6 महीने तक आप बिना चिंता से उस एरिया में घूम सकते हो, आपको बीमारी लगेगी नहीं। टीका क्या करता है, हमको उस बीमारी के प्रादुर्भाव होने पर भी हमको उस बीमारी से बचाता है, वो लगने देता नहीं, हम पर आघात हो रहा है लेकिन टीका जो है उसका प्रभाव ऐसा है कि वो बीमारी को हम पे अंदर प्रभाव करने को देता नहीं। तो भगवान के भक्त के आदेश के अनुसार की गई भगवान की सेवा जो है वो भवरोग का टीका है। भवरोग का परिणाम क्या होता है कि हम काम क्रोध लोभ मदमोह मत्सर द्वेष इससे प्रभावित होते हैं, अहंकार से प्रभावित होते हैं, जन्म 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 मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहते हैं, त्रिविध ताप के प्रभाव से दुखी रहते हैं, ये भवरोग का लक्षण है। बुढ़े होते रहते हैं, बुढ़े बीमार होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, ये भवरोग का प्रभाव पहले कम कम होने लगता है, प्राकृतिक भवरोग से हम प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। ये मतलब नहीं कि हम बूढ़े नहीं होंगे और मृत्यु नहीं होगी हमारी, लेकिन उसका प्रभाव जो हमारे आत्मा पर दुख का होता है, दुख का जो प्रादुर्भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हो तो प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कंसती, ये सेवा करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। सेवा करने के पहले अगर वो दुख का अनुभव करता है और सेवा करने के बाद तुरंत सुख का अनुभव करता है, चाहे अभी तक वो परिपूर्ण नहीं हुआ है, मुक्त अवस्था में नहीं गया है, ये भगवान के प्रेम की प्राप्ति तक नहीं हुई है, बीच की स्थिति में है, फिर भी उसकी चिंता जो है वो सबसे पहले मुक्त हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। सेवा जो है वो सेवा हमारे लिए बड़ा वैक्सीन है, और हम चाहे कितने भी काम क्रोध के प्रभाव में हो, हमारे जीवन में कुछ समस्या हो, कुछ रोग हो, हमें परिवार में कुछ समस्या हो या धन की समस्या हो और कई त्रुटियां हो, दोष हो हमारे जीवन के अंदर, तो दिखते हैं भारत दृष्टि से, अरे किसी को एक आंख ही नहीं है, किसी का एक पैर लगड़ा है, किसी का कान में सुनाई नहीं पड़ता है, बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे आत्मा पर होना है कि नहीं होना है, ये हमारे आप में होता है। और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेवा करेंगे भगवान की, उसमें लगे रहेंगे, तो ऐसे प्रभावों से हम मुक्त होते रहेंगे। क्यों मुक्त होते रहेंगे? क्योंकि सबसे पहले हम भगवान की सेवा करने समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, और शरीर के साथ जो भी जुड़े हुए व्यवस्थाएं हैं, सब स्थितियां हैं, वो भी हम नहीं है, इसके वजह से हम वो उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। समझो कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, हाँ उसका 150 किलो वजन है, उसको जोड़ों का दर्द है, उसको हार्ट का तकलीफ है, उसको डायबिटीज है, उसको लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो चलने को नहीं होता है, वो दिखने में खराब दिखता है, सब लोग हंस रहे हैं उसको देख के, देखो मोटा आ गया, लेकिन उसको पता चल गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तुरंत वो मन से उस कष्ट से मुक्त हो जाए। प्रभुपाद जी एक बार एक बहुत मोटी औरत को मिले जो उसके कथा में आए थे, और वो जब आई तो सब लोग उसको देखने लगे, थोड़ा सा उनके चेहरे में भाव बदली हो गया, तो ऐसे लोगों को बहुत दुख होता है जब लोग उनको देख के चेहरा बनाते, तो प्रभुपाद जी के पास में कथा के बाद में आई, तो प्रभुपाद जी ने कहा यू आर नॉट दिस बॉडी, एकदम खुश हो गए, अरे इतने दिन का मेरे मन में ये चिंता थी कि मेरा ये शरीर कितना दुरूप है, लेकिन प्रभुपाद ने कहते ही वो बहुत खुश हो गए, तो भक्त बन गए तुरंत। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, तब तक शरीर के साथ जुड़े हुए सारी व्याधियां त्रुटियां दोष जो है उसको अपना समझते हैं, उसके लिए दुखी या सुखी होते रहे। ये सेवा का ऐसा प्रभाव है कि सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात है कि सेवा करने के बाद, सेवा जब कर रहे हैं उसमें कोई अल्टीरियर मोटिवेशन यानी कि अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जब मैं सेवा करूंगा तो फिर टेम्पल कमांडर बन जाऊंगा, या जब सेवा करूंगा तो फिर काउंसलर बन जाऊंगा, या सीनियर डिवोटी बन जाऊंगा, या मेरे को चीफ पुजारी का पोस्ट मिलेगा, या मुझे कोई और प्रेसिडेंट का पोस्ट मिलेगा, इसे मैं और सेवा करूंगा, और जिम्मेदारी से करूंगा तो और प्रगति करूंगा, फिर मैं रीजनल सेक्रेटरी बन जाऊंगा, फिर मैं जीबीसी बन जाऊंगा, इस प्रकार की भी तमन्नाएं होती है। भक्ति के अंदर विघ्न हम लोग क्या है, आम जनता से आकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता के बीच में से आ रहे हैं, तो आम जनता के अंदर जो दोष होते हैं वो हमारे अंदर भी होते हैं, अभी केवल हम लोग जब कर रहे हैं सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी दोष जो आम जनता में होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, केवल हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो लोग रस्ते में घूम रहे हैं, इतना ही फर्क है। बीमारी दोनों को है, एक भी डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है और एक रस्ते में बिना ट्रीटमेंट के घूम रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब अन्य अभिलाषा नहीं होती है हमारे मन में, तब जाकर हृदय परिवर्तन होता है, और ये हृदय परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो सब कुछ करके भी कुछ लाभ नहीं। अगर हमारी जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति की स्थिति में सही रूप से स्थित है तो मैं उसको बहुत जल्दी उसको सुधार देता हूं, उसको कोई पाप भी किया है, कोई अपराध भी किया है, कोई पतन भी हुआ है, अगर वो सही स्थिति में भक्ति के स्थित है उसकी चेतना सही जगह पे है, वो नम्र अवस्था में भक्तों का सहारा लेने के लिए तैयार हूं, तो मैं उसको तुरंत बड़े बड़े से अपराध से भी मुक्त कर सकता हूं और मैं अंदर से मुक्त करूंगा उसको, अंदर से शुद्ध करके उसको तुरंत मुक्त करूंगा इस अपराध के प्रभाव से। हमको जानना जरूरी है कि कितनी बड़ी सेवाएं हम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कथा कर रहे हैं, कितने शास्त्रों को कितने श्लोकों का उदाहरण दे सकते हैं और कितने सालों से हम सेवा कर रहे हैं, कितनी प्रकार की सेवाएं हमने की है, इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। वो सारा जो सेवा अलग अलग प्रकार का अलग अलग सालों तक हमने किया है, वो कौन सी भावना से किया है, क्या भाव था हमारा, उस पर हमारे हृदय का परिवर्तन निर्भर रहता है। कर्दम मुनि यहां पर विवाह कर चुके हैं एक राजकन्या को, बहुत जो जिसको देखकर देवता लोग अपने अभिमान से गिर जाते थे, ऐसे सुंदर कन्या को घर पे पत्नी के रूप में लेके आए, उसके बावजूद भी अपने भजन से नहीं ले, पत्नी को भी लगा दिया भजन में और स्वयं भी लगे रहे, और इतना आदर्श उदाहरण है उनका, क्योंकि वो निरपेक्ष थे, पराभक्ति की स्थिति पर किसी भौतिक कलमश से इच्छा से मुक्त थे, इसलिए उनके घर में भगवान ने स्वयं जन्म लिया। इतनी बड़ी बात है, शायद हमारे घर में भगवान जन्म लेंगे लेकिन भगवान भावना जरूर जन्म ले सकती है। वसुदेव देव के घर में भगवान ने जन्म लिया, कश्यप मुनि के घर में भगवान ने जन्म लिया, कर्दम मुनि के घर में भगवान जन्म ले रहे हैं, फिर नंद महाराज के घर में प्रकट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनसे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी भी भावना निरपेक्ष होगी, हमारी भी सेवा की भावना सिंपल सादगी में होगी, कोई उसमें अन्य अभिलाषा नहीं होगी और हम वो सिंसियर और प्रामाणिक होंगे, तो भगवत भावना जो है वो जरूर उत्पन्न होगी, जो तो भगवान की तरह ही हमारे हृदय में भगवत भावना जागृत होना, यानी कि भगवान का अवतार होना जैसे ही है। तो भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवा पर अवतार लेते कि नहीं, नित्य करते हमारे जीवा पर, हम देख नहीं पाएंगे शायद उनको हमारी बद्ध अवस्था के अनुसार, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान के बारे में श्रवण, ये स्वयं भगवान का ही अवतार है, जो हमारे जीवन में, हमारी चेतना में, हमारे मन में, हमारी भावना में हमेशा होते रहता है, अगर उसको हम उस स्थिति से उस रूप में स्वीकार करेंगे तो। भगवान के श्रवण को, भगवान की कथा को, भगवान की सेवा को, स्वयं भगवान के दर्शन को, ये सब वस्तुओं को अगर हम उस भावना से सुनेंगे या स्वीकार करेंगे तो हर स्थिति में हमारे मन में, भावना में, हृदय में भगवान का अवतार होते ही रहेगा और भगवान हमेशा उपस्थित रहेंगे हमारी चेतना में। तो कर्दम मुनि के उदाहरण से भगवान हमको दिखा रहे हैं कि गृहस्थ होने से, ब्रह्मचारी होने से, सन्यासी होने से कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, चारों आश्रम जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए बनाए गए। चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुणकर्म विभागशा, ये एक सुविधा के लिए बनाए हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन उनका कोई ऊपर नीचा नहीं होता है। सामाजिक दृष्टि से हम सन्यासी को दंडवत करते हैं, कायदाग्रस्त को नहीं करते, लेकिन भगवान की दृष्टि से ये सब भाई है, कोई सन्यासी है, कोई ग्रस्त है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, भगवान केवल देखते हैं कि इसकी भगवत भावना कितनी प्रकट है। तो सन्यासी होकर भी अगर कोई पद के लिए लालायित है तो कोई मतलब नहीं, कोई सिंपल सा ब्रह्मचारी है वो भगवान की भक्ति में रत है, नम्र है, निरपेक्ष भावना से भगवान के लिए समर्पित है, तो भगवान की दृष्टि से वो श्रेष्ठ है। और कर्दम मुनि जैसे गृहस्थ है, नंद महाराज जैसे गृहस्थ है, दशरथ महाराज जैसे गृहस्थ है, कश्यप मुनि जैसे गृहस्थ है, वो कितने श्रेष्ठ है, क्या किस सन्यासी से वो कम है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई भक्ति के नियमों का 100% पालन करता है तो वो गृहस्थ होने पर भी सन्यासी से भी श्रेष्ठ हो सकता है। वे नंद महाराज जो थे उनके पास तो कितना परिवार था, सुंदर पत्नी यशोदा थी, दो पुत्र थे, चार भाई हैं उनके, उनके आठ पुत्र हैं, धन संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ों गाय उनके पास में है, उनका लालन पालन होता है, बहुत धनवान है वो, लेकिन कैसी भक्ति है उनकी। और आपको उदाहरण बता दें कि गृहस्थों के लिए कैसा कोई बंधन नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसको लिमिटेशन, मर्यादा नहीं है, अरे हम तो गृहस्थ हैं हम क्या कर सकते हैं, आप तो ब्रह्मचारी हो कोई आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, सन्यासी हो कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बहुत बड़ा भजन कर सकते हो और बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हो, ये बात कैसे झूठ है इस कथा से हम समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे हम भगवान मथुरा गए और कृष्ण बलराम को संग ले के नंद महाराज भी गए थे वाल वालों को लेकर। और जब कंस का वध हुआ तो भगवान कृष्ण बलराम जाके वसुदेव और देवदूत को मिलते हैं और वो दंडवत प्रणाम करते हैं कि माता पिता हम आपकी सेवा में नहीं रहे, दूर रहे, अब हम आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, आप जो आदेश देंगे वैसा करें। तो माता पिता कहते हैं यही रहो, पर हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं गुरु जी के आश्रम में। तो भगवान कहते हैं हाँ, ये बात जो है जब वो राजी हो जाते हैं वहीं रहने के लिए, ये बात नंदगांव वासियों के लिए बहुत बहुत अति पीड़ाकारक थी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी सबके हृदय टूट गए एकदम दर्द के मारे, वेदना के मारे, कि अभी हमारे प्रिय कृष्ण बलराम नंदगांव लौट के नहीं आएंगे, असह्य हो गई इनकी बात। लेकिन समझ भी गए कि ये ऐसा ही होने वाला है, क्या कर सकते हैं हम, वो तो उनके माता पिता है, उनका अधिकार है, भगवान की इच्छा है अगर उनके साथ में रहने की तो हम कौन मना कर सकते हैं, तो हम जिद कर सकते हैं हमारे संग चलो नंदगांव में बढ़िया आनंद है, यहां से भगवान की इच्छा है तो इच्छा है। तो बड़े भारी हृदय से नंद बाबा वहां से चले गए, लेकिन उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि हम कैसे जिएंगे, यशोदा को क्या बताऊंगा, बाकी बाल बालों को क्या बताऊंगा, वो भी उनको क्या बताऊंगा, कहां रहे कृष्ण बलराम। तो बड़े दुखी होते हुए चल रहे थे नंदगांव की ओर वापस, तो एक गांव में रुक गए, उधर लोगों ने बहुत सत्कार किया, तो बड़े प्रिय थे वो राजा नंद बाबा, नंद महाराज का स्वागत किया गया, गौरव किया गया, बहुत उनका सेवा किया गया, लेकिन उनका मन जो है उस किसी सेवा को स्वीकार करने में नहीं था, ना लड्डू खाने में था, ना हार स्वीकार करने में था, ना कोई स्तुतियों को स्वीकार करने में, उनका मन तो दुखी था, केवल उनको हिम्मत नहीं हुई थी नंदगांव जल्दी पहुंचने की, इसलिए उन्होंने एक हॉल्ट लिया वहां पर, एक विश्राम लिया, उसी नाम का गांव का नाम पड़ा गौरव, क्योंकि उनमें नंद महाराज का बहुत गौरव किया गया। फिर बड़े दुखी हृदय से आगे चले चलने लगे, धीरे धीरे बड़े दुखी भाव से नंदगांव पहुंच गए, तो यशोदा मैया को खबर मिल गई कि नंद बाबा आ रहे हैं, कृष्ण बलराम भी आ रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी उन्होंने मक्खन बनाया, जल्दी जल्दी दही बनाया, सबके लिए व्यंजन बनाए, आरती का तैयारी किया, माला की तैयारी की, सब कुछ स्वागत करने की तैयारी की, सब छोटे छोटे गोपियों को सेवा में लगाया, बच्चों को संभाली। सो यशोदा मैया पूछ रही है कहाँ है कान्हा, किधर है बलदेव, कहाँ है, तो कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोलेंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो यशोदा मैया के हृदय पर इतना बड़ा आघात होगा कि वो सहन नहीं कर पाएंगे, चुप बैठे हुए रो रहे हैं। तो कह रहे क्यों मजाक कर रहे हो, तो आगे पीछे देख रहे हैं क्या, पीछे खेलने में लगे होंगे, आते ही बच्चों के साथ खेलने लगे होंगे, तो लेके आओ उनको। बहुत देर तक ऐसा बातें करते रहते, बोलने रहे हैं, बातें बोल रहे हैं कि आप सच बताओ आए कि नहीं आए, तो कहते वो नहीं आए, नहीं आप मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, नहीं सच बात है, वसुदेव और देवकी के साथ रह गए आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो यशोदा मैं एकदम उनको आघात हो गया हृदय, उनको लगा कि अरे कैसे आप वापस लौट के आए, कैसे आ सके आप लौट के, आपने मनाया नहीं उनको, समझा नहीं उनको कि आपको नंदगांव लौट के आना है, आपने वादा किया था दो दिन बाद लौट के आएगा, आपने ऐसे आपने बताया नहीं उनको, तो मैं क्या बताता हूं, जो उनकी इच्छा है उनके लिए आनंद के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी माता पिता के सामने उन्होंने वचन लिया कि हम आपके संग रहेंगे। तो फिर उसका जो है जैसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, वात्सल्य क्रोध के बीच, क्रोध रूपी वात्सल्य, प्रेम रूपी वात्सल्य, दुखी रूपी वात्सल्य, तनाव रूपी वात्सल्य, ऐसे बहुत प्रकार के वात्सल्य, क्रोध आता है, अरे कैसे पिता हुआ आपको, कुछ प्रेम ही नहीं अपने बालक के प्रति, आपसे बड़े भक्त जो है दशरथ महाराज थे, देखो जैसे ही पुत्र की पुत्र चले गए जंगल में, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अपना, वो अपने प्राण को अपने शरीर में रख नहीं सके, क्या कर दिया उन्होंने शरीर का, वो सच्चे माता पिता थे, और आप बाद में वो बोलने लगे कि आप शरीर छोड़ क्यों नहीं दे, उधर जिंदा लौट के कैसे आया, कितना कठोर वचन बोल रही, देखो लेकिन सब प्रेम के वश बोल रही है, ऐसा नहीं कि वो पति का पातिव्रत धर्म को भंग कर रही है, कृष्ण का प्रेम जो है उनके पातिव्रत धर्म से भी ऊपर है, तुमने पति को टोक रही है एकदम कठोरता से कि आपके अंदर वो प्रेम ही नहीं है जो दशरथ महाराज के अंदर राम के प्रति था। अच्छा ये होता नंदगांव ऐसे पहुंचने के बदले में आप वही मर चुके होते, कितना कठोर वचन बोल रही है, किसी व्यक्ति को सुनने के लिए भी कितना कठोर है, वो यशोदा माई जो पत्नी है वो अपने पति को बोल रही, नंद महाराज वह शांति से सुन रहे। बहुत देर बाद ऐसा बहुत बुरा भला कठोर वचन बोल बोल के वो बेहोश हो जाती है, प्रेम के वश वश होकर एकदम बेहोश हो जाती है। फिर उसको हवा देकर जल देकर उसको होश मिला दे तो वो शांत रहे, मतलब दुखी रहती है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। तभी नंद महाराज पहली बार बोल रहे हैं, वो बोलते हैं देखो यशोदा, मर जाना तो मुमकिन था मेरे लिए, मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के बिना रहने में क्या अर्थ है उसका, भगवान अगर नहीं है, कृष्ण बलराम नहीं है, उनकी सेवा नहीं है तो हमारे जीवन में क्या अर्थ है, हम मुर्दे के समान ही है अगर वो हमारे जीवन में सेवा नहीं है, जीवन तो शव समान, अगर भगवान नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है तो हमारा जीवन मुर्दे की तरह है, लाश की तरह है। लेकिन उन्होंने जाते वक्त मुझे ये कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, सब मेरी शिक्षा और मेरे माता पिता का जो कर्तव्य है उसको संतुष्ट करके पूरा करके मैं ब्रज में लौट के आऊंगा। इस बात को जब मैंने सुना तो मैंने सोचा अगर मैं विरह में दुख में अगर शरीर त्याग दिया मथुरा में ही, और कुछ समय बाद अगर वो लौट के आते हैं और पूछते बाबा कहाँ हैं, तो आप लोग कहेंगे बाबा गुजर गए, तो कितना बड़ा दुख होगा उसको, हमारे कन्हैया को कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। इसलिए यशोदा हम दोनों को जीना होगा, इसलिए मैं इस नाचीज शरीर को लेकर अभी भी घूम रहा हूं। आप समझ सकते हैं कितना दिव्य प्रेम है उनका। एक तरफ है मरना, चलो दुख हो गया शरीर छोड़ दिया खत्म हो गया, लेकिन वो मरने की इच्छा होते हुए भी जीवित रहना, और कितने साल, 100 साल तक रहे हो ऐसे ही, एक दो साल की बात नहीं है, दो दिन की बात नहीं है, 100 साल तक सब लोग इसी इच्छा इसी भावना में रहे कि आएंगे आ जाएंगे आएंगे आ जाएंगे, रोज लड्डू बन रहे हैं, रोज माला बन रही है, रोज डेकोरेशन हो रहा है कि आ जाएंगे, फिर लड्डू फूट रहे हैं, माला तोड़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिर आशा से 100 साल तक लगे रहे ऐसे, जिस शरीर को त्याग करना चाहते नश्वर समझ के, पीड़ा में त्यागना चाहते उसको बनाए रखे, क्योंकि जब भी आएंगे 2 क्षण के लिए आएंगे, 4 मिनट के लिए आएंगे, फिर भी अगर हमको देखेंगे जीवित तो उनको खुशी होगी। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं देखने के लिए, देखने से उनको खुशी होगी, लेकिन वो मेरी याद करेंगे तो मैं नहीं रहूंगा तो दुखी हो जाएंगे, इसलिए जिंदा रहेंगे। इसलिए कहते हैं यशोदा हम दोनों को जीवित रहना होगा। ये गृहस्थ होते हुए कितना प्रेम उनके भगवान के प्रति। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि गृहस्थ आश्रम जो है वो कोई भी ऐसा कोई कम दर्जे वाला और एक डिफिकल्ट आश्रम जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, बहुत कठिन है सब जिम्मेदारियों के बीच में निभाना, ये समझना गलत है। क्योंकि जो मौका जो अवसर सन्यासी को प्राप्त है वही मौका ब्रह्मचारी को और गृहस्थ को और वानप्रस्थी को भी प्राप्त है। केवल हृदय की भावना का प्रश्न है, हमारे हृदय की भावना कहाँ है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्र में महाप्रभु जी के शास्त्र में लिखा है महाप्रभु के भक्तगण वैराग्य प्रधान। गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी होते हुए अगर हृदय के अंदर भौतिक वस्तुओं के लिए विरक्ति नहीं है तो फिर सब कुछ दिखावा ही दिखावा है। तो सन्यासी वस्त्र पहनने के बाद भी भौतिक वस्तुओं से हृदय से विरक्ति नहीं है तो फिर उस वृत्ति का लाभ क्या है। और कलरफुल कपड़े पहनने पहन के धन संपत्ति होते हुए सारा ऐश्वर्य होते हुए मान सम्मान होते हुए अगर हृदय से उन वस्तुओं से विरक्त है तो वही भक्ति है। उदाहरण सर तुम्हारे पांडव का उदाहरण देखिए आप, इतना बड़ा संपत्ति था उनके पास में, चक्रवर्ती सम्राट बने भगवान की इच्छा से, भगवान ने उनको बनाया बड़े प्लान के साथ, पूरे विश्व का राजा बना दिया उनको, इतना ऐश्वर्य इतना सम्मान इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य दिया उनको, लेकिन वो उस उनमें से एक भी वस्तु से आसक्त नहीं थे। इसका प्रूफ क्या था, जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए एक तिनके की तरह उन्होंने त्याग दिया उसको तुच्छ समझ के, वो तुरंत हिमालय की ओर चले गए, ये उनका प्रूफ था। परीक्षित महाराज वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे, जब ये चले गए तो उनको रखा गया राजा के रूप में और वो सभी संपत्ति का उपभोग कर रहे थे राजा के रूप में, लेकिन जैसे ही शाप मिला श्रृंगी के साथ श्रृंगी से कि मर जाओगे 7 दिन के बाद सर्प पक्षी का दंश होगा, तो ऐसे बताया जाता है कि उनके अंदर वो शक्ति भी थी उस शाप को नष्ट करें और मतलब वो भी स्वयं राजर्षि थे, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, उस शाप का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तुरंत स्वीकार किया, तुरंत राजवस्त्र उतारे, कौपिन पहना, मुकुट उतार दिया, तुरंत नदी की ओर चले, गंगा जी के पास सुखदेव जी को मिले, भगवान की इच्छा परिपूर्ण मानकर वो चले। वो गृहस्थ थे, अरे हमारे पास क्या धन है उनके सामने, क्या ऐश्वर्य है, क्या संपत्ति है, क्या अधिकार है हमारा, क्या प्रभाव है, कुछ भी नहीं, हम तुच्छ है, गृहस्थ के रूप में तुच्छ है उनके सामने। इतना बड़ा ऐश्वर्य होने के पश्चात भी उन्होंने तत्क्षण उसको त्याग दिया, क्योंकि जब वो ऐश्वर्य था तभी भी वो भगवान से ही रथ थे, उनका नाम परिचित था। उस व्यक्ति को जिन्होंने उन्होंने गर्भ में देखा था उसका ही खोज कर रहे थे पूरे जीवन भर वो, इसलिए उनका नाम ही था परीक्षित। हर व्यक्ति की परीक्षा करते थे कि ये वो तो नहीं है जिसपे गर्भ में दर्शन किया था चतुर्भुज विष्णु। तो ऐसे कई उदाहरण है हमारे शास्त्र में, स्वयं हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी बहुत धनी थे, वो बहुत बड़ा धन था उनको, ऐसे कहा गया कि बोट होता ना, बोट जहाज, वो भरकर ऐसा गिरने वाले थे, ऐसे भरकर पर्वत के समान उनके पास सोने की मुद्राएं थी जब वो वहां से निकले थे, और इतना अधिकार था, नवाब हुसैन शाह का राज्य खुद चला जाता, नवाब हुसैन शाह केवल राज्य की सीमा को बढ़ाने में व्यस्त रहते थे, ये पूरा कारोबार जो है राज्य का, इतना उन पर विश्वास था नवाब हुसैन शाह का कि वो कोई आते नहीं थे, सब इनको चलाने को दिया था, इतना अधिकार था उनके पास, बहुत धन था उनके पास, लेकिन उनका हृदय जो था वो हमेशा भगवान के ही, महाप्रभु जी के ही ध्यान में और सेवा में लगा था। और जैसे ही मौका आया तुरंत वो चले गए, सब कुछ त्याग करके, सब धन मन बांट दिया ब्राह्मणों को, गरीबों को कुछ धन यहां रख दिया, और तुरंत फकीर बनकर, हाँ धनवान से लेके एकदम फकीर बनकर भगवान की सेवा में चले। रघुनाथ दास राजपुत्र थे वो, हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार के परिवार में सब संपत्ति उनकी थी, क्या कमी थी, देवताओं से भी श्रेष्ठ सुंदर और सद्गुण संपन्न उनकी पत्नी थी, लेकिन कुछ भी वस्तु उनको कभी भी मोहित नहीं कर सकती। जिसका चित्त भगवान में लग गया है उसको कोई भी चीज मोहित नहीं कर सकती, चाहे वो ग्रस्त हो या विरक्त हो, भारी मुश्किल से। और जैसे ही मौका मिला, जब भगवान का आदेश हुआ, तब उसमें ऐसे लगे रहे जैसे इतने लिप्त हैं, सब बिजनेस करते रहे, व्यवहार करते रहे, बड़ी कुशलता से अपने पिताजी को और अंकल को कोर्ट से छुड़वा दिया उन्होंने, सजाओं से मुक्त कर दिया, बहुत कुशलता से दुनियादारी का व्यवहार किया उन्होंने, हाँ पूरा ऐसा लगा कि अरे तो अभी लग गया पूरा गृहस्थी में, अभी हम सफल हो गए, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार वो कर रहे थे। वैसे जैसे मौका आया सब कुछ तिनके के समान छोड़ दिया, चले गए। त्यक्त्वा पूर्णमशेष मंडलमति श्रेणीम सदा तुच्छवत्, एकदम तिनके के समान तुच्छ मान के सब कुछ छोड़ के भगवान के चले गए। तो वैसे ही हर व्यक्ति को, जो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो किसी भी आश्रम में, को पता होना चाहिए कि हर एक आश्रम में भगवान ने 100% सुविधा बना के रखी है भगवान की तरफ आ जाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई भी दोष किसी में नहीं है, हम दोष देखते हैं जो कि हम अपने आजू बाजू की स्थिति में आसक्त हैं। अगर कोई सन्यासी होकर अपने शिष्यों से और अपने क्षेत्र से आसक्त है तो वो गलत है, और गृहस्थ होकर अपने पुत्रों से और पत्नी से और धन से आसक्त है तो वो भी गलत है। दोनों आश्रमों में आसक्ति जो है वो गलत है। तो इस आसक्ति को छोड़ने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए हम गुरु जी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि ये आसक्ति किसी भी शुद्ध भक्त के, संत के कृपा के बिना नष्ट नहीं हो सकती। उनको विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो भी कुछ उदर निर्वाह है, जो भी कुछ हमारी स्थिति है, उसको भगवान संभाल लेंगे। जैसे हमारे श्रीधर स्वामी थे, वह राजा के दरबार पे राजगुरु के रूप में सेवा देते थे। एक बार उनको विरक्ति आई, चलो इनकी सेवा कितने साल करेंगे, ये सब छोड़ देना चाहिए। तो उसी वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनको बालक हुआ। चलो यहां तो ठीक था, जैसे ही बालक हुआ तो पत्नी का देहांत हो गया। वह तो अभी भी सोच रहे थे कि सब कुछ छोड़ के वो विरक्त बन जाए, और देख रहे कि नया नया बालक माता के बिना मातृहीन होकर पड़ा हुआ है, मेरी जिम्मेदारी है। वो सोचते कि मैंने पढ़ा था कि सबकी देखभाल भगवान करते हैं, ऑफकोर्स हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो आत्म साक्षात्कार था उस स्तर पे कि भगवान सबकी देखभाल करते हैं। देखो कैसे इनकी देखभाल करेंगे पता नहीं, तो जन्म हुआ वो पेट के बैठ के बच्चा रो रहा है, उधर देखते हैं कि चिपकली जो है गर्भवती चिपकली जो है वो जब जम पाती है तो उसके गर्भ से एक छोटी चिपकली गिर जाती है, छोटी सी, इतनी सी, इसका वजन 2 ग्राम भी नहीं होगा। जैसे गिरती है वहां से कीटक आता है तो तुरंत वो चिपकली का बच्चा उस कीटक को खा लेता है। अरे जन्म होते ही भगवान ने उस वक्त भोजन का दाना पानी का व्यवस्था करके रखा है। ये मन में उनका साक्षात्कार था ही उनका, ऊपर से बाहर का उदाहरण भी देखते हैं, वो तुरंत बालक को छोड़ के चले जाते। उसके बाद में वहां का राजा जो है वो जुलूस में आता है वहां से, तो देखता है अरे कौन बच्चा रो रहा है, कोई नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे रो रहा है, ले लो, हमें संतान नहीं है, हम इसका पालन करेंगे अपने पुत्र के रूप में। तो वो राजा पुत्र बन गया। इस कारण का हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उतना साक्षात्कार नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी स्थितियां हैं उसको सुधारने में भगवान समर्थ है। एक शरणागति का लक्षण है 6 में से, अवश्य रक्षिते कृष्ण, हर स्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। ये जब विश्वास जिनको होता है तो उसका आश्रम आश्रम तक और फर्क नहीं पड़ता है। जब हमको पता चलता है कि हमारे आश्रय श्री कृष्ण भगवान है, उनके आश्रय लेने के बाद में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना हम शरण जाएंगे 100% जाएंगे अगर, तो वो 100% सहारा देंगे हमको, और 100% हमारे लिए जो अनुकूल है वो करेंगे, हमको अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन करेंगे हमारे लिए अनुकूल ही। ये अगर श्रद्धा किसी के मन में है शरणागति के बल पर, तो उसके जीवन में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस वो एक ही करेगा, भगवान का नाम लेगा, वो भगवान की सेवा गुरु महाराज के निर्देश के अंदर करता रहेगा। इतना सिंपल फॉर्मूला है और वो हर आश्रम को लागू है। सार क्या है इसका कि चाहे किसी भी आश्रम में हम रहे, किसी भी अन्य वस्तु से हमको आसक्त नहीं होना है, हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में स्थिति के अनुसार। लेकिन आज वो स्थिति है और कल नहीं है, क्योंकि सेवा को रोकने की कोई जरूरत नहीं। सेवा जो है वो कोई भी भौतिक साधन पर निर्भर रहती नहीं है। अगर गाड़ी है तो ही प्रचार करेंगे, और किताब है तो ही बोलेंगे, कोई तो ही प्रचार होगा, मतलब प्रसाद है तो ही हम प्रचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब साधन है, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन सेवा जो है उसके लिए कोई भौतिक बाधा नहीं। कोई अगर हमारे पास वाचा भी नहीं है, जो हम गूंगे हैं, तो भी मन के अंदर हम भगवान को रो रो कर पुकार सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा दिव्य होती है। और चाहे साधन हो तो अच्छा है, तो लगा लो, लेकिन साधन नहीं होने पर यह सेवा रुकती नहीं है। हम उसको रोक सकते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है, अगर हमारी इच्छा है तो वो चलती रहेगी। इतने उदाहरण है हमारे इस मनुष्य का, इतने शरीर की और स्थितियों के, परिवार की समस्याएं होने पर भी ऐसे लगे रहते हैं भगवान की भक्ति में। तो इसलिए हमको किसी भी साधन पर या किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर या किसी के धन के ऊपर या हमारे जो रिसोर्सेस है उस पर आसक्त होकर निर्भर रहना चाहिए। भगवान की सेवा प्राप्त होती रहे, ये न के न प्रकार है। हम कमजोर इंद्रियों से या सक्षम इंद्रियों से या कमजोर साधन से या सक्षम साधन से, जो भी हो, जिस भी स्थिति में हो, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो वो ये जो विरक्ति है अपने आप आ जाती है। वो टीका जो है ना, वो सेवा का इतना पावरफुल है कि पूरे जन्म जन्मांतर तक आपको भावरोग से मुक्त रखेगा। जब तक यहाँ है जब तक हमको रहना है, और जब तक यहाँ से जाना है, कहीं भी जाना हो, और कई लोगों में जाना हो, भगवान के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, ये सेवा का जो टीका है कि हमको हर स्थिति में, हर अवस्था में, बद्ध या मुक्त अवस्था में, हमेशा भगवान के चरणों में रखेगा। और गौलोक धाम में जाकर करना क्या है, तो सेवा ही करनी है भगवान की। यशोदा मैया क्या करती है, नंद महाराज क्या करते हैं, गोपियां क्या करती है, तो सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। तो यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेवा का, और ये सेवा हमको कंटिन्यूअसली परमानेंटली भगवान से जुड़े रखती है। हमारा जो सबसे बड़ा सुरक्षा है वो भगवान का संपर्क है, और वो संपर्क जो है हमेशा बद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में सेवा के माध्यम से बना रहता है। इसलिए आइए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कार्तिक के महीने में कि हमें सेवा दे, वो हमारे स्थिति के अनुसार बाहरी दृष्टि से श्रेष्ठ हो या कनिष्ठ हो, सेवा होनी चाहिए बस। और उसके लिए शुद्ध भावना होनी चाहिए, प्रामाणिकता की भावना होना चाहिए, सिंसियर भावना होनी चाहिए, निरपेक्षता होनी चाहिए। उसके लिए कोई फल की अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। ऐसी सेवा मिलेगी तो उससे बड़ा जीवन में कोई प्राप्ति नहीं, कोई भाग्य नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी कलुषित मनोवस्था में भी हमको आपकी सेवा में लगाए रखिए, और उसी सेवा के माध्यम से धीरे धीरे हम सब भी दोषों से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रश्न क्या था? कौन बोला? हाँ
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी,
मेरा एक प्रश्न है कि दुनिया का कौन सा ही डॉक्टर मनुष्य जीवित रहने की हानि नहीं देता, क्या वो ज्ञानी आपका ज्ञानी रहता है?
आपका प्रश्न जो है हमारे विषय से संबंधित नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपका प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसका मतलब है?
जो डॉक्टर जो है मनुष्य जीवित रहने की हानि नहीं देता,
क्योंकि मनुष्य जीवित रहना, मनुष्य जीवित रहना ये भगवान के हाथ में होता है। इसलिए कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपको जीवित या जीवन के लिए कोई ध्यान दे सकता नहीं। जन्म मृत्यु जो है वो ठाकुर जी के हाथ में होता है, तो वो कैसे देगा? वो भी स्वयं ठाकुर जी के हाथ में, उसका भी जीवन और मृत्यु ठाकुर जी के हाथ में, तो कौन से बंद उनको ध्यान दे देगा? और कोई प्रश्न है किसी का? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत